नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्रोग्राम बैठक के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं माशाल्लाह से। जो लोग सोशल मीडिया पे बैठते हैं सब उनको जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शेख अबू यहिया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, और उनका जो काम है लोग उससे भी माशाल्लाह से वाकिफ़ हैं। तो आज हल्की फुल्की हमारी उनके साथ एक नशस्त है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेख साहब की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी तहकीकात हैं, या दरस व तदरीस के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, तो वो लोगों के सामने आएँ ताकि लोग उनकी जो मुख्तलिफ जो खिदमात हैं उनसे इस्तिफादा करें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और शार्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए बात यह है कि जैसे एक आम व्यूअर होता है, सही बात तो यह है कि मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मैं भी आपके बारे में ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता। बस इतना मुझे पता है कि आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में काम किया है, और माशाल्लाह लोग इस हवाले से आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और बड़ा अच्छा इल्मी काम है।
अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन ज़ाहरी बात है एक आलमी दीन, एक रिसर्चर की उसके अलावा भी ज़िंदगी होती है, बहुत कुछ वो कर रहा होता है जिसका लोगों के सामने इतना ज़्यादा तारुफ नहीं होता। एक ख़ास जेहद से उसका तारुफ आम हो जाता है। तो आज हम चाहते हैं कि वो चीज़ें भी सामने आएँ ताकि लोग उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। तो बस मुख्तसर अल्फाज में आप ये बताएं कि आजकल आपकी क्या कोई इल्मी और तहकीकी एक्टिविटीज़ क्या कुछ हैं, मतलब कोई तदरीस चल रही है? मैंने सुना था आपका कोई दुकतूरा PhD भी चल रहा है, तो किस मौजू पे PhD कर रहे हैं, कहाँ पे तदरीस कर रहे हैं कोई, तो उस हवाले से कुछ बताएं।
इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और आपकी टीम का, दीगर जो अहबाब हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आज आपके इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। मेरी जो मसरूफियात हैं, सबसे पहले तो जामिया इमाम बुखारी मकाम हयार सरगोदा, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और वहाँ एक तो मैं सही बुखारी का एक हिस्सा यानी एक जुज़ पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा तख़स्सुस का एक सिलसिला वहाँ शुरू किया हुआ है, तख़स्सुस फ़िल हदीस का। मदारिस से जो फ़ारिग़ुत तहसील तलबा होते हैं वो वहाँ आते हैं, और हमने हदीस के फ़न में कुछ और भी मालूमात देते हैं जो आम मदारिस में उन्होंने जनरली पढ़ी होती हैं लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो हदीस है, तखरीज है, तहकीक है, और इसके साथ जो उलूम है और इसके साथ अकीदा भी होता है। तो ये दो मसरूफियात मेरी जामिया में होती हैं फ़र्स्ट टाइम में, यानी सही बुखारी का एक सबक है और उसके बाद फिर वो तखस्सुस वाली क्लास है। उसके बाद मैं तकरीबन ये जोहर के वक़्त, बल्कि उससे पहले फ़ारिग हो जाता हूँ, फिर मैं घर में चला जाता हूँ और वहाँ फिर हमारी मसरूफियात लिखने की, पढ़ने की, रिकॉर्डिंग्स वगैरह की होती हैं। जैसा कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, उनके बारे में, और इसी तरह हमने कुछ और भी सिलसिले शुरू किए थे, अगरचे वो यानी हालात के मुताबिक ऊपर नीचे होता रहता है काम। जैसे कि गांधी साहब के बारे में हमने अफकारे गांधी के नाम से एक सीरीज़ शुरू की थी, तो उसके भी मेरे ख्याल में कोई 7-8 जो वीडियोस थी, शॉर्ट वीडियोस, हमने कोशिश की थी कि वो शॉर्ट ही रहें, वो आई थी। और कुछ और भी पाइपलाइन में हैं, इसी तरह कुछ और भी लोगों को हमने टच किया था, खुसूसन रवाफिज़ के हवाले से जो सहाबा इकराम पर वो एतराज़ात करते हैं। एक तो इंजीनियर साहब का सिलसिला है कि वो मख्फी वार करते हैं, रवाफिज़ ज़रा खुल के, और जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो ज़रा और खुल के बात करते हैं, जिस तरह इंडिया से वो शहरयार रज़ा आबदी साहब हैं एक उनके, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ही सहाबा इकराम की तोहीन करते हैं, और अपने तौर पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो कुरान और सुन्नत से दलायल के एतबार से मुज़य्यन हैं और उनका मौक़िफ़ जो है वो दलायल पर मबनी है। तो उनका भी हमने शुरू किया है रद्द करना, तो रद्द हम दलायल के साथ ही करते हैं, जो दलायल वो देते हैं हम उनका जायज़ा लेते हैं कि क्या ये दलायल वाकई उनके मौक़िफ़ पर दलील बनते हैं या नहीं बनते। तो बस इसी तरह की होती हैं। बाकी एक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, जिसमें जो भी वीडियो डाटा हमारा है साथ में यूनिकोड भी उसके हम अटैच कर रहे हैं, साथ में उन चीज़ों को हम पहले लिखवा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हें एप्लीकेशन में शामिल कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह हम जल्द लॉन्च करेंगे। इसके अलावा और भी लिखने पढ़ने के काम हो जाते हैं।
कुछ आपकी कोई किताबें पब्लिश हुई हों?
एक किताब मेरी पब्लिश हुई थी 2010 में,
अच्छा,
सही बुखारी का मुताला और फितना इनकार हदीस। वो इंडिया से थे शब्बीर अहमद अजहर मीरठी साहब,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
तो उन्होंने 40 साल सही बुखारी पढ़ाई थी और 40 साल के बाद फिर उन्होंने ये किताब लिखी, जिसमें उन्होंने साबित किया कि इसमें तो बहुत सारे झूठ जमा हो गए हैं, या नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी की। बल्कि जैसे जैसे किताब में आगे बढ़ते जाते हैं, शुरू शुरू में उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि वो नरम रवैया अख्तियार करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खुले अल्फाज में मुहद्दिसीन को नऊज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ तक कहते हैं और शिया के एजेंट और पता नहीं क्या। बहर तो उस किताब का मैंने जवाब लिखा था 2009 में, तकरीबन 2010 में वो पब्लिश हो गया था। तो उसके बाद फिर और इल्मी काम तो होते रहे, लिखने लिखाने के बहुत सारे हैं। असुन्ना, माहनामा असुन्ना के नाम से एक मंथली मैगज़ीन था, तो उसमें बहुत सारे मज़ामीन जो वो शाया होते रहे। तो बेसिकली ये जो इनकारे हदीस के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया था वो भी उसी में सिलसिलावार शुरू किया था, बाद में ये किताबी सूरत में भी आ गया। तो और भी यानी तहक़ीकी जो मकालात हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन वो तबाह नहीं हुए। तो इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह उनको तबाह करेंगे, या कम से कम उनको सेट करके PDF में लोगों के लिए पेश कर देंगे ताकि वो इस्तेफादा करें।
दूसरा, आपका माशाल्लाह से सुना है PhD चल रही है, तो उसमें आपका वो कहाँ तक, किस मरले पे है, और मतलब उसमें क्या मौजू क्या है आपका?
PhD मेरी 2013 में शुरू हुई थी, 2013 से लेकर 2018 तक हमारा सेशन था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि PhD लेवल पे आके सुस्ती आ जाती है और मसरूफियात भी होती हैं, उस वजह से कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि
कुछ
वो,
यूनिवर्सिटी की वजह से भी डिले हो जाता
हाँ जी,
है।
ऐसे भी हो जाता है। तो वो अब मेरा बिल्कुल एंड पे है इंशाल्लाह। मैं चंद दिन तक, बल्कि मैं भी पिछले दिनों गया था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो सुपरवाइज़र साहब हैं डॉक्टर हसन मदनी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे जमा करवाएं अब, यानी वो काम कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब उसके लिए कुछ मामलात हैं जो दफ्तरी होते हैं,
बेहतरीन,
तो वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, चंद दिनों में जमा भी हो जाएगा। और उसमें मेरा जो टॉपिक था वो मसला तकफीर अहकाम व शराइत असरी तनाजुर में, जो उस वक़्त खुसूसन 2013 में तो बड़ा हॉट इशू था, अब भी है। तो इस पे ये मेरा टॉपिक था।
नहीं माशाल्लाह, बहुत अहम टॉपिक है और वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी है। ये बताइए, अब जैसे आपका जिक्र आया कि तखस्सुस फिल हदीस आप करवा रहे हैं, तो हदीस में जो ख़ास तौर पे आपने हदीस का इल्म हासिल किया, तो आपके असाज़ा में से, शुयूख में से जिनका कोई आप तذکرہ करना चाहें?
जी, एक तो मेरी जो तालीम है उसका आगाज़ हुआ था हिफ्ज़ुल कुरान से। वो मैंने मैट्रिक के बाद हिफ्ज़ुल कुरान का सिलसिला शुरू किया था। शौक़ तो मेरा शुरू से था, लेकिन 99 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके बाद मैं हिफ्ज़ के लिए गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 4.5 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं जामिया रहमानिया, जामिया लाहौरुल इस्लामिया जिसे कहते हैं, वहाँ से मैंने तजवीद पढ़ी थी। एक साल ही मैंने, वो कुलियतुल कुरान था, दरस निज़ामी और तजवीद को मतलब इकट्ठा किया हुआ था। तो दूसरे साल में मैंने दाखिला लिया था और उसी साल मैं फ़ारिग हो गया। उसके बाद मैं मरकज़ उद्दावतिल सलफ़िया सत्याना बंगला फैसलाबाद, तो वहाँ मैं चला गया। और वहाँ जैसा कि शयूख थे मारूफ शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला वो थे, इसी तरह मौलाना अब्दुल शुकूर शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला वो थे, वो दीगर असातिज़ा थे। तो वहाँ मैं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मैं जो हदीस के हवाले से मैंने ज़्यादा, यानी मेरी एक शुरू से ख्वाहिश भी थी, तो उस वक़्त रावलपिंडी में एक इदारा बनाया गया था दारुल तखस्सुस व तहक़ीक़ के नाम से, जो डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब की ज़ेर इंतज़ाम था। और वहाँ तालीमी जो मामला थे वो फजीलतुल शेख अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला उनके पास थे। दीगर असातिज़ा भी थे, यानी अरबी अदब के लिए अलग यानी उस्ताद रखे हुए थे। कुरान करीम हमने तरकीब के साथ पढ़ा था और उसके लिए अलग हमारे उस्ताद थे, दीगर असातिज़ा भी थे। तो हदीस के हवाले से हमारी जो रहनुमाई थी या जो तालीम थी वो فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری حفظہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یعنی ان سے میں نے زیادہ استفادہ کیا اس فن میں.
اور وہ میرے خیال میں حافظ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد
جی،
تھے، خاص
وہ
تھے.
شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یعنی میری اچھی بات چیت رہتی تھی، اگرچہ میں ان کا براہ راست تو اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن جب میری کتاب یہ شائع ہوئی تھی صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، اس سے پہلے چونکہ وہ السنہ میں مضامین شائع ہوتے تھے تو وہ شیخ صاحب کے پاس پہنچتا تھا، تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ رابطہ کیا تھا، تو میری تحسین کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. اس کے بعد پھر اکثر رابطہ رہتا تھا یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو میں ان کا ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں، لیکن انڈائریکٹ یعنی شیخ صاحب ان کے شاگرد ہیں، میرے استاذ گرامی جو ہیں. تو تدریس کا آغاز میں نے 2008 میں کیا تھا، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ چھانگا مانگا کے قریب ایک مدرسہ تھا، وہاں سے اب بھی ہے، اب وہ بھویاسل مین پہ موجود ہے 5 ایکڑ میں. تو وہاں سے شروع کیا تھا. پھر جب میں نے ایم فل کے لیے ایڈمیشن لینا تھا تو ظاہر ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کلاس ورک ہوتا ہے، تو پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر 2014 سے تقریباً میں جامعہ امام بخاری سرگودا میں ہوں. تو یہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ آیا تھا تدریس میں، تو اس طرح تو بس اسی طرح پھر یعنی شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ جب سے بنا پھر ختم نہیں ہوا. یعنی اگرچہ میں ادھر قصور میں تھا تو السنہ شائع ہوتا تھا، تو مہینے بعد وہ، بلکہ کمپوز بھی میں ہی کرتا تھا، یعنی میں نے کمپوزنگ سیکھ لی تھی شروع سے ہی، تو میں جو بھی لکھتا تھا وہ میں خود ہی کمپیوٹر پہ لکھتا تھا، لیپ ٹاپ پہ، تو کتاب بھی میں نے خود ہی اپنی کمپوز کی تھی، تو وہ میں السنہ بھی میں ہی کمپوز کرتا تھا. تو وہ جب اس کے شائع ہونے کا وقت قریب آتا وہ شیخ صاحب پھر تشریف لاتے، ادھر میں پہلے جامعہ میں ہوتا تھا ادھر چھانگا مانگا، تو وہاں آتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے 1-2 دن پھر اس میں جو غلطیاں، جو کمی بیشی، ترمیم، اضافہ وہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ شائع ہو جاتا تھا. تو 2014 میں پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح یہاں تخصص کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب، تو آپ یہاں آئیں. تو پھر وہاں 2014 سے لے کر تا حال وہیں میں اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں.
تو کوئی سنا تھا آپ آن لائن بھی آپ نے کچھ شروع کیا ہوا ہے تدریس وغیرہ، تو کیا ہے وہ سسٹم؟
جی، اصل میں یہ جو جدید آلات ہیں یا جو ہمارا حالات کے مطابق، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حالات سے ہم آہنگ ہونا، یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا تھا، تو میں اس بارے میں سوچتا رہتا تھا. تو یہ تقریباً 3 سال پہلے میں نے سوچا کہ آن لائن تعلیم کا کوئی سلسلہ شروع کرنا چاہیے، جو لوگ مطلب مدارس میں نہیں جا سکتے اور مختلف اپنے مطلب کام پہ ہیں، جاب پہ ہیں، کاروبار ہے ان کا، یا بیرون ملک ہیں، تو کوئی ایسا ہمیں چاہیے لائحہ عمل ترتیب دینا جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. تو ہم نے ایک ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے ایک یعنی آن لائن ادارہ شروع کیا تھا. تو اس میں پہلے سال پہلا جو سمیسٹر تھا وہ میں خود ہی پڑھاتا تھا، طلبا تھے ہمارے پاس مختلف خطوں سے تھے، یعنی صرف ملک سے ہی نہیں، ملک سے باہر بھی تھے، بلکہ اکثریت باہر سے ہی تھی. تو ہم پڑھتے رہے، پڑھاتا رہا میں انہیں، پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اس کو آگے جاری رکھنا چاہیے، پھر دوسرا سمیسٹر شروع کر لیا، پھر تیسرا کر لیا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ اور اساتذہ کا بھی بندوبست کر لیا جو آن لائن پڑھا سکتے ہوں. تو اب الحمدللہ ہمارا چوتھا سمیسٹر شروع ہونے والا ہے، 3 سمیسٹر ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں ابھی دسمبر میں، جنوری سے لے کر جون تک ہمارا 1 سمیسٹر ہوتا ہے، جولائی سے دسمبر تک دوسرا ہوتا ہے.
تو اس کی کیا کوئی فیس وغیرہ یا فری؟
جی فیس ہے، فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ فلیکسیبل ہے، جو لوگ دے سکتے ہیں وہ پوری فیس دیتے ہیں، جو آدھی دے سکتے ہیں، جو آدھی بھی نہیں دے سکتے، جتنی دے، لیکن رکھی ضروری. وہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ آن لائن، خصوصاً جو آن لائن سلسلہ ہے نا، اگر آپ فیس نہیں رکھیں گے تو لوگ نہیں پڑھیں گے. جن لوگوں کو ہم نے پہلے سمیسٹرز میں ہم نے فری بھی رکھ لیا، کچھ اسٹوڈنٹس سے انہوں نے کہا، مثال کے طور کچھ کشمیر سے تھے، مقبوضہ کشمیر سے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے فیس بھیج سکتے ہیں، ہمیں آپ ایڈمیشن دے دیں، تو ہم نے دے دیا، لیکن وہ چند دن ہی رہتے ہیں، وہ پھر وہ چلے جاتے ہیں، سنجیدگی نہیں آتی. جب انہوں نے فیس ادا کی ہوتی تو ایک ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، ہم نے فیس دی ہوئی ہے، ہم نے پڑھنا ہے. तो इसी तरह ये हमारा मतलब एक्सपीरियंस है। अब भी ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर हमारी जो फ़ीस थी वो तकरीबन पिछले सेमेस्टर में 13,000 थी, जिसमें 3,000 एडमिशन फ़ीस और 10,000 हमारी सेमेस्टर फ़ीस थी। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, हमने कहा आप 500 दे दें, सिर्फ एक नाम हो जाए कि आपने कुछ दिया है तो आपको हम एडमिशन दे देते हैं।
माशाल्लाह, बढ़िया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो सिलसिला कामयाबी से चल रहा है। अभी जो हमारा एडमिशन हुआ था पिछले सेमेस्टर में, मैं थोड़ा सा यानी जिसे बंदा बददिल कहता है हो गया था कि शायद मतलब हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आते, तो और फिर अखराजात चूँकि दूसरे ट्यूटर रखे हुए थे उनकी वजह से शायद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो हमारे एक भाई थे जो हमारे स्टूडेंट भी थे, नवीद अनवर भाई, वो सऊदीया में होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, इधर चकवाल से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम इसकी अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट करें ना तो इंशाल्लाह ये अच्छा हो सकता है सिलसिला। तो इस दफ़ा भी हमने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 50 से ज़्यादा एडमिशन थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला रह गया। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सिलसिले में होता ये है कि बल्कि मदारिस में भी ऐसे होता है कि शुरू साल में मतलब 50 हैं तो
लोग
आखिर
हैं,
तक वो
हाँ
25-30 रह
ऐसे
जाएंगे,
होता
इधर ज़्यादा हो सकता है।
है।
अगर आप फीस ना रखें फिर तो समझेंगे हफ्ते बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा।
सही।
लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के 30 के करीब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर चले आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जो मतलब रसूख है ग्रामर में, सीगे हैं, तरकीबें हैं, और हमारे जो असातिज़ा हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हैं। अभी जो हमने एक हमारे जो सबसे बड़े शेख जो हमारे उस सिस्टम में, अब मैं चूँकि मसरूफियात ऐसी ख़ुद नहीं पढ़ा पाता, सफ़र करना पड़ता है तो वो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, वो शेख इकबाल बिन रमज़ान कसूरी हाफिज़हुल्लाह ताला हैं। तो वो माशाल्लाह बहुत मेहनत के साथ बहुत माहिर भी हैं ग्रामर वगैरह में, तो स्टूडेंट बहुत मुतमिन हैं, बल्कि बहुत दुआएं देते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए भी कोई ऐसा मौका होगा जिसे हम मतलब अवेल कर सकेंगे, कि हम मदारिस में जा नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते, इतना वक्त नहीं होता। तो हमारी क्लास जो है वो हफ्ते में 4 दिन 2 घंटे होती,
अच्छा, हफ्ते में 4 दिन।
4 दिन 2 घंटे, तो जुमा हफ्ता और इतवार ये छुट्टी होती है, सोमवार से जुमेरात तक 4 दिन, और वो भी सेकंड टाइम होती है पर पाकिस्तानी हिसाब से। उसमें ये होता है कि अक्सर जो लोगों को ये सहूलत होती है पाकिस्तान से बाहर भी, कि उस वक़्त वो मैनेज कर लेते हैं, कुछ के लिए मसला भी होता है, लेकिन ज़ाहिर हमने तो टाइम एक ही रखना, तो वो इसलिए मुख्तलिफ़ ख़ितों से हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, दुबई से, सऊदीया से स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से भी हैं। उसके लिए हमने एक ये ऑप्शन रखी हुई कि अगर किसी की क्लास रह जाती कभी तो लाइव क्लास लेना ये लाजिम है। वो उसके बगैर अगर लाइव क्लास ख़त्म करते हैं तो फिर भी यानी रिज़ल्ट सिफर हो जाता है, वो तवज्जो नहीं रहती। लाइव क्लास में जब उस्ताद बकायदा पूछता भी है, सुनता भी है, आप सुनाएं, आप बताएं, स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आई, उससे उनकी दिलचस्पी बरकरार रहती है। तो जिनकी क्लास रह जाती है उनके लिए वो रिकॉर्डेड जो सेशन है उसकी ऑप्शन होती है, उनको एक्सेस दे दी जाती है, वो भी हमारी वेबसाइट पे ही ये सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब शुरू किया था तो शायद ये तसव्वुर नहीं था कि इस कदर कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह।
वेबसाइट किस नाम से है? इसी नाम से,
वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम
इसी
से,
नाम से।
वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी .com।
तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे काम करने का कैसे ख्याल आया? मतलब क्या मुहर्रिक बना, क्या सबब बना?
इसकी जो तहरीक है मुझे हुई ये एक यानी पसे मंज़र है इसका, चूंकि शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ मेरा एक ताल्लुक़ था, मैं उनका शागिर्द था, मेरे उस्ताद थे। तो रावलपिंडी में 1 साल पढ़ने के बाद वो जेहलम में आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ इस्तेफादे के लिए आ गया, उनके साथ रहता था मैं, मतलब दिन रात वहीं रहता था, पढ़ता था मैं तखरीज, तहकीक, रुवात के बारे में जो भी मामला, हर वक्त साथ होता था, मेरी रहनुमाई करते थे। एक बात अक्सर मैं सुनता था कि ना शेख अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला का कोई इख्तलाफ़ है शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह से, अगरचे वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक मतलब कुछ तनाव था आपस में। मैंने एक दो दफ़ा पूछा कि क्या वजह है, आप शागिर्द भी हैं तो ये किस तरह ये मसला, मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे कहते कि आपको शायद समझ नहीं आएगा, आप रहने दें। तो मैंने बार बार पूछा तो एक दिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये सबब हैं। वो असल में जेलम में थे, इंजीनियर साहब भी और शेख साहब भी जेलम में थे, तो तो इधर जो लोग इन्होंने शुरू तो यहाँ से किया ना, मतलब कि ऑनलाइन तो बाद में गए, पहले वहाँ उन्होंने एक यानी कुरान क्लास कह लें या
हल्का
कोई भी
बना लिया।
वहाँ हल्का बना लिया, और कुरान क्लास के नाम पे लोग जाते थे, तो फिर इस तरह के अफकार उन्होंने बयान करने शुरू किए, लोग मुतासर होना शुरू हुए। तो शेख साहब चूँकि यहाँ थे तो उन्होंने कह दिया कि ये जो इंजीनियर साहब ने ये घुमराह आदमी है, इनसे बचना चाहिए, मतलब ये सही नहीं है, ये सही मनहज पे नहीं है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वो चूँकि दूर थे,
दूर थे।
और ये शायद दो तीन दफ़ा इन्होंने मुलाकात की, बाकी फ़ोन पे ही वो बातचीत करते थे। तो शेख साहब ने उनसे गुजारिश की यानी अपने उस्ताद गिरामी से कि आप ना इनसे हाथ उठा लें, क्योंकि ये गुमराही फैलाते हैं और नाम आपका इस्तेमाल होता है, लोग समझते हैं कि शायद, क्योंकि कुछ उन्होंने वीडियो सवाल जवाब के रिकॉर्ड की थी, अभी
हाँ
उन्होंने अपनी
पुरानी
वेबसाइट पे
बात है,
लगाई
मैंने
हुई,
देखी है
तो उस वजह से लोगों में तासुर ये जाता है कि शायद आप भी
इनके
इनके
हामी
हामी
हैं।
हैं। तो शेख साहब ने बहरहाल उनसे कहा कि मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने वो जिस तरह ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहिए ना, मतलब लिख के कह देता या बोल के कह देता, वो नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह से वो कहते थे कि आपको करना चाहिए, और वो शायद समझते थे कि ये बंदा मतलब दूर और ना चला जाए, मतलब हम इसे हाथ बिल्कुल खींच लें ये और दूर चला जाएगा, उनके जहन में ज़ाहिर है यही
उनमें
बात
हिम्मत थी,
होती।
मसलियत
हाँ,
थी।
हिकमत और मसलहत। तो ये पहला मौका था जब मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम सुना कि ये वो मतलब हस्ती हैं जिनकी वजह से दो उलमा में तनाव है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की उसमें कोई इतनी गलती नहीं थी, क्योंकि जब ये इंजीनियर साहब मिलते थे ना तो वो उनके शो ऐसे करते थे कि मैं तो बिल्कुल, मैंने तो ऐसी बात कही नहीं, और इधर आके ऐसी बातें करते थे, तो वो समझते थे कि शायद ये कोई लागतबाजी की वजह से ऐसा कह दिया गया। बहरहाल ये इशू तो लोगों के यहाँ मशहूर है, सोशल मीडिया पे भी वो उस वक़्त की ऑडियोज़ कुछ रिकॉर्ड करके लोगों ने डाली हैं। तो उस वक्त तो मुझे पता चला कि ये इंजीनियर साहब है और उनके अफकार इस तरह के हैं, और ये आप समझ लें कि 2008 की बात होगी, 2008 के करीब की, उस वक्त इतना ज़्यादा खुले भी नहीं थे मिर्ज़ा साहब, मतलब बहुत दबे लफ्ज़ों में कोई बात कहते थे तो कहते थे, अब तो बहुत खुलकर कहने लगे हैं। उसके बाद फिर जब कुछ लिखना शुरू किया तो इस हवाले से मैंने एक दो मज़ामीन भी लिखे थे, मेरी फिर शादी भी जेहलम में हो गई।
अच्छा
हाँ
माशाल्लाह।
जी, तो मुझे याद है कि मेरी शादी हुए अभी कुछ दिन हुए थे, तो मैं उधर ससुराल पे था, तो मैंने कॉल की, नंबर हासिल किया इंजीनियर साहब का, तो मैंने कॉल की उन्हें, वो तकरीबन 2 घंटे कॉल चलती रही हमारी,
अच्छा
पहले 1 घंटा मुकम्मल हो गया, फिर दोबारा कॉल कर ली। तो उसमें मैंने कुछ बुनियादी बातें रखी थी, यही अक्सर आम लोगों को ये शुबा था कि ये अपने आप को अहलेदीस कहते हैं या बावर कराते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप क्या अहले हदीस हैं, तो कहते मैं मनहजे अहले हदीस पे हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप मनहजे अहले हदीस पे हैं तो जिस तरह बाकी सारे लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो आप इससे क्यों इज्तनाब करते हैं। तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ज़्यादा करीब आएँ। तो मैंने कहा फिर तो आपकी वेबसाइट का नाम अहले सुन्नत पाक .com है, तो आपको ये अहले सुन्नत का लफ्ज़ भी ख़त्म करना चाहिए ताकि शिया भी करीब आएँ, और उसके बाद फिर आपको मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए, हिंदू ईसाई सिख भी करीब आए। बार ये बातें कुछ चलती रहीं, कुछ और बातें थीं, और उसी दौरान ये बात चल गई कि इसहाक जहलवी साहब के बारे में मैंने पूछा कि आपका क्या नज़रिया है, और मैंने कहा कि उलमा ने तो उसे कहा कि ये गुमराह आदमी है। तो इंजीनियर साहब उस वक़्त कहने लगे कि जो इसहाक जहलवी साहब को गुमराह कहता है वो इस्लाम दुश्मन है।
अच्छा
तो मैंने कहा कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई शेख ज़ुबैर अली ज़ई हाफिज़ाउल्लाह ताला उनके बारे में फिर आपकी यही राय है? कहते वो तो गुमराह नहीं कहते। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है गुमराह नहीं कहते, सारे उलमा कहते हैं
सही।
और अकायद ही ऐसे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई कहें कि नहीं गुमराह नहीं है। मैंने कहा अगर उन्होंने कह दिया तो, चूँकि मेरा तो राबता था रोज़ाना ही तकरीबन होता था, अगर उन्होंने कह दिया तो कहने लगे कि फिर गुमराही उन पर लौटेगी, यानी वो खुद गुमराह हो जाएंगे
अच्छा
अगर इसहाक जहलवी साहब को गुमराह कहेंगे तो। बहरहाल थोड़ी देर और बात हुई तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर जब उन्होंने देखा कुछ सवाल मैंने ऐसे कर दिए हैं कि उन्होंने जवाब नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने कॉल काट दी। मैं बार बार करता रहा, फिर किसी और ने उठाया, लड़के ने, कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये नमाज का कौन सा टाइम, ईशा का तो बहुत बात हम बात कर रहे थे रात को। बहर उसके बाद उन्होंने मेरा कभी फ़ोन नहीं, उसके बाद कोई बात बिलमुशाफा तो दूर की बात है, फ़ोन पे भी नहीं हुई। तो सुबह को मैंने शेख ज़ुबैर ज़ई रहमतुल्लाह अलैह को फ़ोन किया फजर की नमाज़ पढ़ के। तो मैंने फ़ोन किया तो जिस तरह उनकी आदत थी, अबू या भाई क्या हाल है सलाम दुआ के बाद, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैंने कहा कि इसहाक़ जालवी साहब के बारे में आपका क्या नज़रिया है? तो वो कहने लगे कि गुमराह आदमी है। मैंने फिर ताकीदन पूछ लिया कि शेख गुमराह आदमी है? तो कहने लगे गुमराह आदमी, थोड़ा ज़ोर से कहा उन्होंने। मैंने फिर तीसरी दफ़ा पूछ लिया, मैं चूँकि कॉल रिकॉर्ड भी मेरी उस वक्त कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती थी, मोबाइल में वो फंक्शन था, वो चाइना का मोबाइल था लेकिन हर कॉल उसमें रिकॉर्ड हो जाती थी। और उसका पस मंज़र एक ये भी था कि इस कॉल से भी पहले कुछ दिन पहले मैंने एक मज़मून लिखा था और वो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे पहला मज़मून था इंजीनियर साहब के बारे में। उसमें मैंने लिखा कि ये उर्दू फोरम उस वक़्त हुआ करता था पहले, उस पर मेरा अकाउंट था। तो मैंने उसमें लिखा कि इंजीनियर साहब की गुमराही, और उसमें मैंने चंद बातें की कि ये मतलब सहाबा कराम के बारे में उनकी ये पॉलिसी है या उलमा के बारे, उलमा अलहदीस के बारे में, क्योंकि शेख इरशादुल हक असरी साहब के बारे में तो उस वक़्त भी ये और दीगर उलमा के बारे में भी इस तरह की बातें करते थे कि ये सारे किसी को कहते सूफ़ी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वो जो मैंने लिखा पोस्ट, तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबूत दें इन चीज़ों के। और वही सबूत हासिल करने के लिए मैंने कॉल की थी उन्हें, इंजीनियर साहब को। जो मैं कॉल की वो जो डिबेट बातचीत हुई वो इसी सिलसिले में थी। तो वो जब मैंने शेख साहब को कॉल की तो मैंने दोबारा से तीसरी दफ़ा पूछा, तो उन्होंने कहा कि जाल मुजिल है इसहाक़ जालवी साहब, यानी गुमराह गुमराह कुनिंदा है। तो मैं आगे से उनको बताने लगा था कि मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ बार बार तकरार के साथ। तो मैंने कहा कि झेलम में एक लड़का है इंजीनियर मोहम्मद, मैं अभी इतना लफ्ज़ बोला पूरा नहीं बोला, तो कहते हैं कि मोहम्मद अली फजूल आदमी है, मोहम्मद अली फजूल आदमी है, दो दफ़ा कहा। तो मैंने उससे रबता ख़त्म कर दिया, 1.5 साल हो गया मैं उसकी कॉल भी नहीं उठाता। तो मैंने कहा कि शेख साहब वो आपका नाम इस्तेमाल करता है, जब मतलब लोगों में तो वो ऐसे बावर कराता है कि आप उसके साथ हैं। तो कहने लगे कि मुझसे जब कोई पूछेगा तो मैं कम अज़ कम अल्फाज में ये कहूँगा कि वो गलत आदमी है, तो फिर उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। ये बात हुई, कॉल ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक मज़मून लिखना चाहिए, फिर मैंने एक मज़मून लिखा था उस वक़्त 2013 में कि फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम लाने वाले सहाबा किराम की तोहीन, बल्कि ताखीर से ईमान लाने वाले सहाबा किराम की तोहीन। वो उनका जो वीडियो बहुत पुरानी थी, जो अब भी मतलब हम पेश करते हैं लोगों के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ है ना कुरान करीम में सूरतुल फतह में आया है, ये तो उन 1400 सहाबा किराम की शान है जो बैते रिजवान में मौजूद थे। तो आप इसको पकड़ के बाद वालों पे फिट करते हैं, फतह मक्का के बाद जिन्होंने मौत के डर से तलवार के ज़ोर पे कलमा पढ़ लिया था, तो ये तो कुरान के मुंह में अपना लुकमा डालने वाली बात है। इसको बुनियाद बना के पहले मैंने मज़मून लिखा था, और उसमें कुछ दलाइल भी दिए कि बाद वाले सहाबा इकराम भी मोमिन हैं और उनकी भी इज़्ज़त है, उनका भी एहतराम है। ये पहला मज़मून था। इसके बाद मैंने एक दो और मज़ामीन भी लिखे। फिर कुछ अरसा यानी ऐसे चलता रहा सिलसिला। मेरे जहन में ये था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो 2015 में दोबारा जब मैं सरगोधा में चला गया तदरीस के सिलसिले में, वहाँ मैंने महसूस किया कि कोई इस तरह का काम होना चाहिए वीडियो की सूरत में। होता ये था उस वक़्त बिल्कुल मामला उलट था। उस वक़्त हम मज़मून किसी भाई को भेजते कि ये हमने मज़मून लिख दिया है, जो भी मतलब इंजीनियर साहब हैं आप उनको ये जवाब दे दें। तो आगे से जवाब आता कि चूंकि हमने वीडियो में बयान किया है तो हमारा जवाब भी वीडियो में दिया जाए। उस वक़्त ये मुतालबा था। मैंने कहा कि चले अगर ये वीडियो वाला मुतालबा है तो हम इसको भी पूरा करते हैं। पहले मैंने ये किया कि जो मज़मून लिखा हुआ था उसको वो जो इमेज बना के वीडियो में इमेज चला दी है, यानी वही इमेज चला दी है वीडियो में। तो आगे से जवाब आता नहीं कि वीडियो में जवाब होना चाहिए जिस तरह हम देते हैं, मतलब ये था कि फिर मैंने ये 2015 में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हमने शुरू किया। उस वक्त शुरू किया ये था कि मतलब एक छोटा सा वो कमरे में रख के वो कैमरा में आगे बैठ गया। तो उस वक़्त तो ये तो ज़ाहिर है कि इस तरह बैठ कर बात करना, क्योंकि शुरू से मैं खिताबत की लाइन में नहीं था, बल्कि जब मैं दौरे तालबिल्मी में कहीं दर्स देना पड़ता तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, कि ये बड़ी मुसीबत है, किस तरह लोग बोलते हैं। एक झिझक थी,
सही
वो
है।
भी थी। बारह बाद में जुमा पढ़ाना मैं शुरू हो गया था, लेकिन अकेला कैमरे के सामने बैठ के तो
वो कैमरे को समझाना मुश्किल हो जाता
बहुत ज़्यादा।
है।
तो वो बस अवकात ऐसे भी होता कि एक एक वीडियो को 20-20 दफ़ा भी रिकॉर्ड करना पड़ता कि नहीं यहाँ गलती होगी, इसको दोबारा रिकॉर्ड करें करें। और शुरू की जो हमारी वीडियोज़ हैं, फिर उनके अंदर वो दरमियान में कहीं कट आ जाता था, उस पर भी इंजीनियर साहब ने एतराज़ किया कि ऐसा बंदा मुझे जवाब दे रहा है जी, 1 मिनट में 20 दफ़ा उसकी वीडियो कटती है। तो इस ये भी यानी शुरू में ऐसे शुरू किया। फिर कुछ शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब अमनपुरी हाफिज़ुल्लाह ताला के साथ कुछ सवाल जवाब थे, वो हमारा चैनल था उस वक्त अहले सुन्नत PK.com, ये हमारी वेबसाइट थी, और अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल था। कुछ अरसा वो चलता रहा, तकरीबन 1 साल। उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे एक ख्याल आया कि इंजीनियर साहब की अपनी ही बातें लोगों के सामने पेश की जाएं, यानी उनके क्लिप ही। तो चूंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी रिवायात जो हैं जो उनके बकौल झूठी हैं, उनके बकौल ज़यीफ़ हैं, और ये उम्मत का बेड़ा गर्क करने वाली बात है ज़यीफ़ रवायतें पेश करके। जब सही हदीसें इतनी बड़ी तादाद में हैं तो इमाम मुस्लिम ने ये लिख दिया है, फिर ज़यीफ़ हदीसें पेश करने की क्या ज़रूरत है, और इस तरह की बातें। वो तो मैं वो वीडियो में बताना ये चाहता था कि देखें, उसमें मेरी वीडियो नहीं थी, मेरी सिर्फ आवाज़ थी, कि देखें कि इंजीनियर सब खुद एक तरफ ये कह रहे हैं कि तदलीस, और फिर इमाम आमश और इमाम सुफियान सौरी के बारे में कहते हैं कि ये दोनों इमामुल मुदल्लिसीन हैं। तो मैंने कहा कि इमामुल मुदल्लिसीन उनकी रिवायत अगर अल्बानी साहब पेश करें तो कहते हैं कि ये मरदूद है, ये झूठी रिवायत है। अगर कोई और पेश करें तो कहते हैं कि देखें जी, ये ज़यीफ़ हदीसों पर दीन को उस्तवार करते हैं, और इस तरह। लेकिन ख़ुद इन्होंने अपने पंफलट में ये देखें और ये बोलकर भी रिवायत बयान की हुई है। तो हमने वो क्लिप उनका जो ना बार बार चला के, एक मतलब चला के कि ये गलत है, ये ज़यीफ़ है, दूसरी उनकी रिवायत पेश कर दी जो ख़ुद वो ज़यीफ़ पेश कर रहे हैं, फिर दोबारा उनका क्लिप चला दिया, फिर एक और रिवायत पेश कर दी, फिर तो वो उन्हीं की वीडियो थी तकरार के साथ। तो वीडियो जो हमने एक वीडियो अपलोड की, दूसरी भी कर दी, दो तीन वीडियो थी इस सिलसिले की, जिसमें यानी तकरीबन तमाम वीडियो जो मवाद था वो इंजीनियर साहब का था और हमारी सिर्फ वॉइस थी पीछे। तो इन्होंने मतलब कि इनके पास टीम तो शुरू से थी, यानी टेक्निकल चीज़, हाँ जी, लोगों की। तो रात को इन्होंने पहले एक स्ट्राइक भेजा है, यानी यूट्यूब को कंप्लेन की कि ये हमारा कॉपीराइट मवाद है और इन्होंने अपने यूज़ किया हुआ है। तो दो वीडियोस पे उन्होंने यके बाद ही ये दूसरे पे भी फ़ौरन कर दिया। तो अगर हमारे पास पहले आता कि एक नोटिफिकेशन आया तो हम उन वीडियोस को प्राइवेट कर देते या डिलीट कर देते। बाहर रातों रात मेरा अकाउंट जो है ना वो यूट्यूब से ख़त्म हो गया। सुबह हुई तो मुझे वो मैसेज आए हुए थे, मेल मैंने पढ़ी तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था, अकाउंट ब्लॉक हो सकता था, हो चुका था। फिर मैंने बहरहाल एक कोशिश की किसी तरीके से, कुछ साथियों से रहनुमाई ली कि हम मतलब कुछ अपील करते हैं, वो की भी, लेकिन मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक ही रहा। और फिर वो जो ब्लॉक करने के लिए ज़ाहिर है ईमेल भेजनी होती, वो अपने यानी जो 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 अपने अकाउंट के साथ रिलेटेड होती ना ईमेल, उसी वो इनकी पर्सनल आईडी थी, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 95 के नाम से गालिबन ये थी @gmail.com। उस वक्त फिर हमने दुनिया को बताया कि देखें ये कौन सा तरीका हुआ। अगर आप इल्मी जवाब देना चाहते तो आप दे सकते थे कि देखें ये बात गलत है, तो चैनल बंद करवाने का। तो उन्होंने आगे से कहा जी, आप हमारी वीडियोज़ को जो है ना वो कट करके करेंगे तो फिर हम ऐसा ही करेंगे, आप काट के वीडियो लगाते हैं। हालांकि हमने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी उनकी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या सियाको सुबाक के ख़िलाफ़ हो। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा नया चैनल बना लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर हमें वो तरीका भी आ गया, कुछ सर्च करके, कुछ पूछ के
अब किस
उसमें।
नाम से है चैनल?
अब इस्लाह मीडिया के नाम से दो हमारे यूट्यूब चैनल हैं, इस्लाह मीडिया शॉर्ट क्लिप्स है और इस्लाह मीडिया कंप्लीट लेक्चर्स है। तो ये भी आइडिया हमने इंजीनियर साहब से लिया था, उन्होंने भी दो चैनल बनाए हुए हैं, एक कंप्लीट लेक्चर वाला है, तो वो चूंकि कम लोग सुनते हैं, किसी के पास इतना वक्त होता है, और टू दी पॉइंट बात जो होती है 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, वो क्लिप एक अलग अलग टॉपिक पे काट के हम वो लगा
तो अभी
देते
कितने
हैं।
क्लिप्स हैं आपके?
ये जो कंप्लीट लेक्चर्स है वो तो कुछ 125 के करीब वीडियोज़ हैं, और जो दूसरा हमारा शॉर्ट क्लिप्स वाला चैनल है उसमें तकरीबन 700 के करीब वीडियोज़ हैं, और उनमें से तकरीबन 500 तो 500 से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा यही रहा है। हम ये महसूस करते थे कि इससे लोगों को यानी ख़बरदार करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था। बाद में जिस तरह आपने भी माशाल्लाह किया है काम, मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब ने भी किया है और भी कुछ अहबाब ने किया है, तो फिर हमने फोकस इस पे रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ताकि लोगों तक पहुँचाएँ। और बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम शुमार नहीं कर सकते जिन जो हमारे साथ रबते में रबता करते रहते हैं आए दिन, मतलब कोई ईमेल करता है, कोई हमें इनबॉक्स में फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे कमेंट करता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह राह हिदायत पे आ गए हैं। हम तो समझ रहे थे कि वन साइडेड एक ही चीज़ देख रहे थे, हमें दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम तो समझते थे कि यही हक है। और फिर हम ये सोचते थे कि अगर ये गलत है तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये बड़ा मसला था। तो उलमा ने मेरे ख्याल में शुरू में यानी वो जो अवॉइड किया वो इसलिए कि शायद हमारे मतलब इसको टच करने से ज़्यादा लोगों जिन पे पास नहीं है अभी तक वो भी जानेंगे कि ये कौन है। तो शुरू में तो शायद ये बात दुरुस्त थी एक हद तक, लेकिन जब अब जाहिर है कि अब तो वो मैंने बंदे बंदे तक बंदा है, सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा हो, हमने देखा गुमराह से गुमराह बंदे जिन्होंने मादी होने का दावा किया उनके पीछे भी हज़ारों लोग लगे हुए हैं। और ये तो मसला ही ऐसा था यानी एक जज्बाती सा मसला, मुसलमानों को अहले बैत के नाम पे जज्बात में लेके आना और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत से लोग वो राह हिदायत पे आ गए और मुसलसल आ रहे हैं। अभी बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो यूट्यूब पे बैठे थे, सुन रहे थे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इंजीनियर साहब का क्लिप सुन रहे थे, तो साइड पे आया आपका भी, तो हमने कहा देखें ये क्या है, तो सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते ही चले गए। तो अभी जैसे जैसे इंशाल्लाह ये दावत फैलेगी लोगों तक, बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे जो मतलब ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो बात को समझ लेते हैं, जो हक बयान करता है उसको ले लेते हैं जब उनके सामने आ जाए, तो जब तक नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिन्होंने
ब्लाइंड
कसम उठा ली
फॉलोअर जिन्हें
होती,
हम कहते हैं,
हाँ जी,
अंधे मुकल्लद।
अंधे मुकल्लद, वो फिर जैसे वो बात सुनते ही नहीं ध्यान से, तो जो सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ आती है,
आप सही कह रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे लोग हैं वो आपके जो मतलब लेक्चर से जो बाद में आपने बयान किया और वो जायज़ा लिया उनके पंफलेट का, उससे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम मतलब हमें हक समझ आया है।
अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, जो मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, इसका बेसिकली मसला क्या है? मतलब ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुँचा है? देखिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पीछे फैक्टर्स बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दी उलमा का रिएक्शन है, उलमा ने सख्ती की तो वो रिएक्शन में वो भी इस तरफ निकल गया। कुछ लोग ये बयान करते हैं कि जी फेम इसको चाहिए था, पॉपुलैरिटी चाहिए थी, शुरू से इसमें मसला था ये। कुछ लोगों का मसला ये, कुछ ये भी बयान करते हैं कि जी मतलब जैसे हमारे यहाँ एक मकूला मारूफ है ना कि पीर नहीं उठता मुरीद उड़ा देते हैं, तो कोई इसके साथ हैं जो इसको उड़ा रहे हैं। जैसे वो हम देखते हैं ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हकीम नूरुद्दीन भेरवी ने, वो कहा जाता है कि जी उसने उसको वो पीछे से वो। तो आप क्या समझते हैं इसके असल में मसला है क्या? मतलब ये
डॉक्टर साहब दो मेन मसले हैं जो मैं समझा हूँ। अगर हम बैकग्राउंड देखें ना इंजीनियर साहब का, तो पहले ये बरेलवी थे, दावत इस्लामी से इनका ताल्लुक़ था, आरी पगड़ी बांधते थे और वो मतलब बड़े जिसे कहते हैं पुरजोश कारकुन थे। फिर ये बरेलवियत छोड़ के देवबंदियत में आ गए, देवबंदी हो गए, देवबंदियों से आगे फिर ये जमातुल मुस्लिमीन के साथ भी अटैच हुए, अगरचे ज़्यादा अरसा नहीं, तकफीरियों के साथ भी रहे और अब भी इनके राबते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर ये इन्होंने देखा कि ये अहले हदीस इस तरह हैं, तो फिर ये अहले हदीस उलमा के पास और खुसूसन शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के पास गए सवाल जवाब करने के लिए। इनके साथ कुछ इंजीनियर्स भी थे और भी जो इनके साथी थे, बाद में एक आध साथी इनके साथ रहा, वो भी अब साथ छोड़ गया है, यानी जो इनका एक वो टोली थी ना, तो अब ये अकेले ही हैं उसमें, शायद एक आध कोई और हो भी। तो लेकिन ये कभी मतलब अहले हदीस हुए नहीं, यानी इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अहले हदीस हो गया हूँ, या ये बिल्कुल गए ज़रूर हैं, सवाल जवाब किए हैं, लेकिन साथ में ये इनका एक बैकग्राउंड में मतलब शिया के साथ भी राबता रहा। और वो ख़ुद भी कहते हैं मैं सब के पास गया हूँ, मैं बरेलवियों के पास, देवबंदियों के, मैं शिया के पास भी जाता हूँ, उनसे भी बस पूछता हूँ। तो वो जो शिया से मुतासर, और ये जो फेम वाला मसला है ना, ये शुरू से था इनके साथ। और फिर ये मतलब इंजीनियर थे और इन चीज़ों की तरफ चूँकि आम लोगों का ध्यान नहीं होता था, तो इन्होंने देखा कि इन चीज़ों की ज़रा अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं आगे निकल सकता हूँ। तो फिर इन्होंने देखा कि उसका रिस्पांस भी मिल रहा है, फिर ये आगे बढ़ते चले गए। शुरू में ऐसे नहीं थे, चंद एक मामला थे जो कि अहले सुन्नत से जिनमें ये हटे हुए थे, चंद एक मामला थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा शदीद नहीं थे या ये उसको ज़ाहिर नहीं करते थे कि शुरू में। तो अब ये बात ढूंढने के लिए कि इंजीनियर साहब कहते हैं मैं रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता कि अल्लाह राज़ी हो चुका है, मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह राज़ी हो उनसे हमारा क्या जाता है। ये बात ढूंढने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी कि एक कॉल रिकॉर्ड जो हमारे पास आई, एक भाई ने लाहौर से भेजी कि मेरे पास वो कॉल है, मैं आपको भेजता हूँ, जो उन्होंने पर्सनल की थी। उस वक्त ये बातें पर्सनल में करते थे, सामने लोगों के सामने मजमे में भी नहीं और ऑन दी रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो आहिस्ता 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 ये आगे चलते चले गए। जहाँ तक उलमा का रिएक्शन है, मेरे देखे ना, मैंने मिसाल दी शेख ज़ुबैर ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ बोले नहीं कि ये मतलब तो दूर ना चला जाए। बाकी जहाँ तक एक ही बंदा था वो शेख अमनपुरी हाफिज़ाहुल्लाह ताला थे, जिन्होंने कहा कि ये बंदा गुमराह के रास्ते पे है, इसके इतकादात ठीक नहीं है। बाकी उलमा ने तो इन्हें टच ही नहीं किया।
टच ही नहीं
अब
किया।
देखे ना कि हमारे दौरे हाजिर के जो उलमा हैं या फौत हो चुके हैं, कौन ऐसा है जिन्होंने इंजीनियर साहब पे कोई फतवा
आप
लगाया
फतवा
हो।
लगाए, सही कह
हाँ,
रहे हैं,
इवन कि अभी तक भी फतवा नहीं आया।
अभी तक नहीं है, सही कह रहे हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि उलमा का इत्तेफाकी फतवा आम लोगों के लिए जो उनकी रहनुमाई करे कि ये मतलब अहले सुन्नत की राह से हटे हुए हैं। तो उलमा से रिएक्शन क्या हो सकता है? उलमा ने तो इनको जवाब भी नहीं दिया,
मतलब इस काबिल ही
काबिल
नहीं समझे।
ही नहीं समझा कि जवाब दें, अभी तक भी नहीं। वो फिर इन्होंने कहा जी वाले हदीसों ने उलमा ने एक शतुंगला छोड़ा हुआ मेरे बारे में कहा तो हालांकि कितना को फ़र्क है, इंजीनियर साहब की उम्र मेरे ख्याल में अब 43 हुई है, 42 या 43 है, मेरी 37 है, तो 5 साल का फ़र्क कितना को बड़ा गैप है। तो
नहीं, वो ऐसी बातें तो सबके बारे में करते हैं ना। हम जब मिलने के लिए गए थे उनसे, जेहलम में मैं था और हमारे ये साथी आसिम भाई थे, 4 लोग थे हम। तो हमें भी कहा तुमको फ़लाने भेज दिया है, मतलब तो सैफ रहमान वो उन्होंने भेज दिया है, फ़लाने भेज दिया है, और ये भोंगते हैं मेरे ऊपर भोंगते हैं। मैंने कहा भाई कैसे, ये कोई बात करने की ये कोई अंदाज़ तो नहीं है ना। देखें, हम किसी के नुमाइंदा नहीं है, किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बस हमें कुछ सवालात पैदा हुई, आपका किताबचा पढ़ा, आपसे पूछने के लिए आ गए। तो वो ये इस तरह से करते हैं, ये तो खैर उनकी एक टेक्निक है, वो बात आप सही कह रहे हैं।
हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई मतलब उलमा का किरदार है, हत्ता कि बरेलवियों में से भी, बरेलवी मकतबे फिक्र से कोई आलिम ने, किसी ने इनको टच नहीं किया। वो एक वो अली नवाज़ साहब हैं, वो भी हमारे जैसे मतलब तो यंग हैं, उन्होंने कुछ बातें की। इसी तरह देवबंदियों में एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो एक भाई हैं, वो कुछ जवाब देते हैं। तो उलमा का रिएक्शन कहाँ? उलमा ने तो उनके ये समझते हैं कि शायद वो जो रावलपिंडी में थे सैयद तालबुरहमान शाह साहब या सैयद तय्यूरमानजादी साहब, उन्होंने कोई, हालांकि उन्होंने भी कभी मतलब इनको तवज्जो ही नहीं दी
और इन्होंने बल्कि उलमा के बारे में जो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की वो तो बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो तो हमने एक क्लिप भी बनाया था कि वो खादिम रिजवी साहब तो मतलब ऐसे ही कहते हैं कि मैं गाली नहीं देता, असल में ये भी ये कहते हैं, इनका दावा उनसे बड़ा है। इन्होंने कहा जी आज तक आप हमारी एक बात भी ऐसी साबित नहीं, हमने कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हो। हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह का तज़किरा हो रहा था, वही अली हसन नकवी साहब सवाल कर रहे थे कि ये मुशाजरात सहाबा में सुकूत का जो मसला है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और उसने ज़िक्र किया इमाम अहमद बिन हम्बल भी ये कहते हैं सुकूत करना चाहिए। और ये तो उसके बाद जवाब देते हुए इंजीनियर साहब कहते हैं कि जो भी कहता है ना कि सुकूत करना चाहिए, वो उसके फिर खतने चेक करने चाहिए। तो आइम्मा दीन के बारे में इस तरह की लैंग्वेज, अब मैं सोचता था कि बंदा कैसे दिलेर हो सकता है, फिर ये बात जहन में है कि जो सहाबा इकराम के बारे में बात कर सकते उसके सामने और बाद में कौन हो सकता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इन्होंने कह दिया कि जो है ना वो नासबियत वो उनके जो दिल में समाई हुई थी। इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह दिया कि ये बुग्ज़े अहले बैत उनके दिल में भर दिया गया था। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक को माफ़ नहीं किया और कह
बल्कि इब्ने
दिया।
तैमिया के बारे में मेरे सामने कहा
वो
कि
तो
जी
इब्ने
तीन तलाक
तैमिया
भी नहीं
रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो कहते हैं जी तीन तलाक़ें ये तो छोटा मसला है, वो तो कुफर कुफरिया की दें जी, उनके शिरकिया की दें, यहाँ तक उन्होंने कहा। तो बहरहाल हमने कोशिश की बहुत दफ़ा कि हम इनके साथ बैठ जाएं, कहीं कोई बात कर लें चलें, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो मौलवी लड़ते झगड़ते पड़े हैं। तो हमने उनसे कहा कि एक हम तरीका इख्तियार कर लेते हैं। चलो वैसे तो हम तय करेंगे 5 मिनट आपने बात करनी है, 5 मिनट हमने करनी है, और वो लाइव भी चल रहा होगा, रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। जो लड़े झगड़ेगा उसकी बात तो नहीं सुनेंगे लोग। चले एक और मैंने ऑफर दी कि लड़ने झगड़े वाला जो मसला है हम उनके पास चले, मैं अकेला चला जाऊंगा, वो देख ले मेरे पास कोई असलाह तो नहीं है, चेक करके मैं अंदर चला जाता हूँ, सारे लोग इनके वो 100 हों 1000 हों कोई मसला नहीं, हम बैठ जाएंगे और बातचीत शुरू करने से पहले 1 घंटा पूरा आप मुझसे सवाल करते रहे। ज़ाहिर है जब सवाल होता है बंदे को जवाब ना आए तो उसको गुस्सा आता है, फिर वो लड़ता है झगड़ता है, तो अगर 1 घंटे में मैं हाइपर हो जाऊँ तो फिर आप समझेंगे हमारी शिकस्त होगी उसी वक्त। फिर आप, हालांकि सवाल आपने करने हैं और हमने जवाब देने हैं आपके सवालात के, तो फिर आपको पता यकीन हो जाएगा सब लोगों को भी मैं लड़ता नहीं हूँ, तो फिर हम 1 घंटा बात कर लेंगे। वो इस बात पर भी नहीं आए।
ये असल में ना मेरे ख्याल में अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी मौलवी जो है हमें गालियाँ देते हैं उनको सुनना ना। जैसे वो मुशरिकीन मक्का का सा मामला था ना कि जी अल्लाह के रसूल की बात नहीं सुननी, गुलगपाड़ा मचा दो और वो ये है वो, तो अपनी ऑडियंस को इसने ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, बट ठीक है, चंद एक लोग होते हैं हर सोसाइटी में ऐसे आपको मिल जाते हैं, तो वो लोगों का पहले से इमेज ये बना दिया जी फलां को नहीं सुना तो वो सुनते ही
जी
नहीं
ऐसे
है।
हालांकि दावा यह है कि सबको सुनो। मैंने उनसे कहा कि यार देखें आपका वो जो इंजीनियर साहब का दावा यह है कि सबको सुनो, तो एक दिन मेरा भी लेक्चर रख लें उसे,
हाँ सही बात है।
पहले खुद लेक्चर दे दें बाद में आधे घंटे का मुझे वक्त दे दें। चलो सबको सुनना चाहिए तो लोग सुने तो उसी उन्हें पता चल जाए। चलें इस तरह डिबेट ना करें, मौका दे दें इस तरह कभी। बल्कि वो जुमा पढ़ने उधर जाते थे झेलम में, या तो वो जामिया असरिया में चले जाते थे, चौक अल हदीस वहाँ मस्जिद है तो वहाँ चले जाते थे। तो ये पिछले साल मेरा वहाँ जुमा रखा उन्होंने, मैं जुमा पढ़ाने गया तो वहाँ एक साथी इनका आया हुआ था, कोई दोस्त था जो करीबी इनका कोई क्लोज़ था, तो हमारे एक भाई उसे पकड़ के लाए थे कि यार आओ जुमा पढ़ते हैं यहाँ, हम देखें कोई बात होगी सहाबा इकराम के हवाले से, जो इश्काल हो आप पूछ लेना। तो जुमे से पहले ही ना उन्होंने देखा कि वो कुछ टेक्स्ट कर रहे थे, तो वो दोस्त थे जानने वाले, तो उन्होंने पकड़ के ना उधर देखो दिखाओ क्या कर रहे हो, तो मैसेज ये लिखा था उन्होंने इंजीनियर साहब को लिखा था कि यहाँ अबू यहिया साहब जुमा पढ़ाने आए आप ना आना तो ये मतलब तो फिर इंजीनियर साहब उस दिन नहीं आए, हालांकि पहले वहाँ जुमा पढ़ते थे। तो इस तरह उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये जो मुबाहले के हवाले से, वो जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला किया तो अपनी बेटियों को लेके गए, दामाद को लेके गए, बीवियों को लेके नहीं गए, उस पर भी डिटेल्ड हमने लेक्चर दिया था। तो वो चलते चलते एक बात उन्होंने ये की कि ये जो 12 मुनाफिक थे वो फी असहाबी 12 मुनाफिकन, तो उनके नाम ये बताएं ना कौन, ये मौलवी बताएं, अगर आप इनसे सवाल करेंगे तो इनके कानों से धुआं उठना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलेगा जवाब नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि हमारे कानों से देख ले कोई नहीं धुआं निकला, हम तो बड़े आराम से आपको जवाब दे रहे हैं कि सहाबे किराम में से अगर कोई है तो आप पेश करें, कोई एक भी सहाबी जिनको हम सहाबा कहते हैं अहले सुन्नत, उनमें से तो कोई भी नहीं था, वो तो थे ही मुनाफिक, तो अब आपका दावा कहाँ चला गया। और फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा ये वीडियोज़ जो बनाते हैं ना 1 मिनट में जनाब 20 20 दफ़ा वो उसको काटा होता है, वो शुरू में हालांकि ऐसे ही होता था ज़ाहिर है। तो मैंने कहा कि ये जुमा हमारे सामने पढ़ें, मैं जुमा पढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं कि किसे पसीना आता है, हम खड़े होंगे हमें पसीना आता है या इंजीनियर साहब को आता है, हालांकि इंजीनियर साहब तो सुन रहे होंगे बैठे। तो इस तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया में सबसे हकीर जो मखलूक है ना वो मौलवी, वो दीनदार तबका जो है ये इलम वाले जो लोग हैं वो सबसे बुरे
हालांकि जो इल्ज़ाम ये उलमा को देते हैं तो वैसी गंदी ज़ुबान, फोश या एब्यूसिव लैंग्वेज खुद मतलब ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा है।
इस्तेमाल कर रहे होते हैं और
वो
लोग समझते नहीं हैं इस बात को।
हमने वो एक क्लिप भी बनाया था ना कि मैं गाली नहीं देता,
वो मैंने
उसका
आपका देखा था माशाल्लाह।
तो मैंने कहा कि जिस तरह यानी ये कहते हैं मैं गाली नहीं देता, तो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ तो हालांकि हमने तो कभी इस तरह की गाली नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई गुमराह कह देगा, मतलब उलमा ने कह दिया कि ये गुमराह है, या किसी ने कह दिया कि जाहिल छोकरा है, वो एक आलिम ने कह दिया था, इसको बड़ा इशू बनाया उन्होंने कि ये बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। तो बाद में जब इन्होंने कह दिया कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये कल का छोकरा है, तो जब इस बात पे कहा गया कि यहूदियों ने तो ये लफ्ज़ नहीं कहा, तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं तो ये तो तोहीन के ज़िम्रे में आता है, इसको आप वापस ले लें, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा लफ्ज़ है।
अस्तगफिरुल्लाह।
बाकायदा उन्होंने आगे से ये तावील घड़ी कि ये अच्छा लफ्ज़ है, वो छोटी उम्र के लोगों को छोकरा कहते थे, ये इज्जत वाला लफ्ज़ है, ये कोई बुरा नहीं है। अपने बारे में इस्तेमाल हो तो वो बाज़ारी है, तो
बाजारी है, अल्लाह के नबी के बारे में
तो
इस्तेमाल हो
कहते
तो
हैं
बाज़ारी
कि,
है।
यानी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि वो डट गए अपनी गलतियों। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि आप सहीउल इस्नाद का टाइटल दे के, वो जो 72 सहीउल इस्नाद अहादीस, उसमें कम से कम दो दर्जन जो हैं वो अब 25 26 से लेकर तकरीबन 32 33 ज़ईफ़ रिवायात हैं उसमें, तो ये क्यों आप पेश करते हैं? जबकि आप लोगों को कहते हैं मैं सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ाता हूँ, और इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब सही अहादीस का ज़खीरा मौजूद है तो ज़ईफ़ रिवायतें जो हैं दीन में फसाद के सिवा कुछ नहीं है, तो फिर आप ये क्यों करते
क्यों
हैं
करते
फसाद? तो उन्होंने आगे से फिर ये मतलब है कि अब नाम तो नहीं लिया हमारा, तो नाम नहीं लेते, तो किसी ने सवाल किया वैसे ही, तो हमारी तो किसी बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये जवाब, ये सवाल भी अलवी हसन नकवी साहब ने किया था कि ये ज़ईफ़ रवायतें जो आपके पंफलेट में हैं, तो ये इस पे आपका क्या स्टांस है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये इलम जमा किया है, अब ये यानी किसी न किसी के नज़दीक तो सही हैं, या वो शेख ज़ुबैर ज़ई साहब के नज़दीक सही हैं, या शेख अल्बानी साहब के नज़दीक सही हैं, या शेख शुएब अरनऊत के नज़दीक सही हैं, या किसी और मौके के नज़दीक, तो मैंने तो इलम जमा कर दिया है। तो हमने इस पे पूछा कि अगर ये ज़ईफ़ रिवायात इलम है, तो फिर आप लोगों को कहते हैं कि लोग ये ज़ईफ़ रिवायात बयान करके तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी के नज़दीक, किसी ने किसी नज़दीक वो भी
हाँ
सही
वो भी
होंगी,
सही है, सही बात है।
और जो रिवायात आपने अपने पंफलेट में नहीं लिखी हैं वो भी आप लिख दें, मतलब सहाबा की शान में है, चाहे वो ज़ईफ़ हैं किसी ने किसी के नज़दीक वो भी सही होंगी,
सही है।
तो उससे कम अज़ कम इल्मी इस्तेफादा हो जाएगा। तो वो यानी अपनी जवाब नहीं दे पाते तो कोई ना कोई उज़र घड़ते हैं, हालांकि वो बिल्कुल उज़्र लंग होता है।
ऐसे ही जज़ाकुमुल्लाह शेख साहब, बहुत माशाल्लाह से आपके साथ अच्छी नशस्त रही। अल्लाह ताला आपका ये जो भी आपने बयान किया इस फैज़ को जारी करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके इल्म से इस्तेफादा पहुँचाए, और इस फितने की सरकोबी में आपने जो माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन है, या और भी अहले इल्म की है, अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं मैदान में, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब के लिए आखिरी मैसेज तो यही है कि आपकी मज़हबी दुकान अब मज़ीद चलने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं बैठक में एक नए आलम दीन के साथ, और उनकी अच्छी अच्छी रिसर्च और तहकीकात के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।